आज तो लोग बड़ी बातें बना देते हैं ना अल्लाह ताला के हुक्मों के आगे, माजा राद अल्लाह बिहाजा मसाला, अल्लाह का क्या इरादा इस मिसाल से, लेकिन कयामत के दिन जो हैबत होगी ना तो कुछ बोल नहीं सकेंगे, सारे बिल्कुल अल्लाह की बात के आगे ऐसे समीना व ताना करने वाले होंगे, आमन्ना व सद्दकना करने वाले होंगे। तो कुरान पढ़ते हुए भी तो हमें ऐसे ही होना चाहिए ना कि अल्लाह ताला का जो हुक्म आया है हम इस वक्त हम अल्लाह ताला को नहीं देख रहे, उस दिन जाके देखेंगे तो ये हाल हो जाएगा। आज बिन देखे गैब पे ऐसा ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ताला का हुक्म आया है तो उसका हुक्म है, मैं कैसे ना सर झुकाऊं किसी हुक्म को, उसके ऊपर क्रिटिसाइज करना, उसको आउटडेटेड समझना, उसको हकीर समझना कैसे हो सकता है। खुद को अपने आप को खड़ा करके वहां पे अगर देखें तो ये सोच लें कि फिर उस वक्त क्या होगा। वो उस वक्त तो खैर फिरौन भी सर झुका देगा, उस वक्त सर झुकाना बड़ी बात नहीं होगी, आज है बड़ी बात। और खुद यही सोच लेना जी नहीं कुछ नहीं होता जी कुछ नहीं, वहां पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पे तो सब नहीं इस तरह हो जाना है, सब नहीं कामयाब हो जाना है, सभी नहीं। खुद से हम अपने कॉन्सेप्ट्स ना बना के बैठ जाएं अपनी ख्वाहिशात पे मबनी, रियलिस्टिक हो, जैसे बताया गया है उस तरह ही अकीदा रखें, और ये समझ लें कि उस दिन इख्तियार किसी का नहीं है, मालिक यौम दीन, जब रब कितनी दफा दिन में आप कहते हैं फिर भी उसको मालिक नहीं समझते यौम दीन का, फिर भी समझते हैं और लोग होंगे जिनकी इतनी पहुंच होगी या इतना अल्लाह ताला से नऊज़ बिल्लाह जबरदस्ती कोई करवा लेगा काम। अल्लाह अकबर। कुल मैयरज़ुकुकुम मिनस समावाति वल अर्द, कह दीजिए कौन रिस्क देता है तुमको आसमानों से और जमीन से, कौन आसमानों से भी बारिश बरसा के जमीन से रिस्क निकालता है कौन, तो अल्लाह ही है। कुल अल्लाह, कह दीजिए अल्लाह, और वो इस बात को तो मानते थे कि रिस्क देने वाला अल्लाह है, मगर अलूहियत में शिर्क करते थे कि इलाह बनाने में, इबादत के लायक बनाने में, किसी और को भी इबादत के लायक समझ लेते थे। वा इन्ना वा इय्याकुम लअला हुदन औ फी दलालिम मुबीन, और बेशक हम या तुम अलबत्ता हिदायत पर हो या खुली गुमराही में हो। यानी अब यह है कि तुम्हारा अकीदा कुछ है और हमारा अकीदा कुछ है, दो ग्रोह बन गए ना, एक ने मान लिया और एक ने नहीं माना, तो सवाल किया जाता है कि हम में से एक ग्रोह हिदायत पर और एक गुमराही पे, एक तो गलत है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ही सही हो। देखिए ना आज का ये जो कॉन्सेप्ट है ना इससे निकल आए कि जो लोग कहते हैं नहीं जी सारे ही सही हैं, सारे बेचारे सारे ही अल्लाह की तलाश में ही है ना, एक खुदा की तलाश में ही है, देखो उनका भी सही है और हमारा भी सही है, वो भी तो एक खुदा को मानते ही है ना। नहीं ऐसा नहीं है, सब सही नहीं हो सकते, याद रखें एक है जो सही है, कैसे हो सकता है एक शिर्क कर रहा है एक तौहीद पे, दोनों सही हो गए। तो इसलिए एक हम में से है जो हिदायत पर है, एक हम में से है जो गुमराह है, तो अब आपको समझ लेना चाहिए कि हक और बातिल बराबर नहीं है, तौहीद और शिर्क बराबर नहीं है, इस ख्याल को जहन से निकाल दें, एक का अकीदा सही है और एक का अकीदा गलत है, दोनों बराबर नहीं है, जब दोनों ही इसमें बराबर नहीं है तो अंजाम में बराबर कैसे होंगे। इसलिए बहुत सोच समझ के जिंदगी गुजारने की जरूरत है कि हमारा अकीदा सही हो। कोई बात नहीं, ये भी कर लिया तो क्या फर्क पड़ गया, वो भी कर लिया तो क्या फर्क पड़ गया, एक तो हर चीज है क्या फर्क पड़ गया, इससे क्या हो जाएगा, नहीं बहुत कुछ हो जाता है, या तो हिदायत है या तो गुमराही है, अगर कोई हिदायत भी नहीं है ना तो याद रखिए वो गुमराही है, बस बात खत्म हो गई, दूसरी कोई रास्ता नहीं है, बीच बीच का कोई रास्ता नहीं है, दोनों हक नहीं हो सकते, दोनों सही नहीं हो सकते, इसलिए अपने आप को तसल्लियां ना दें इससे कि सारे ही सही हैं, जो जिस मजहब से भी है किसी को ना गलत कहो, सब सही है जी। कुल्ला तुसअलून अम्मा अजरम, कह दीजिए तुमसे नहीं सवाल किया जाएगा उसके बारे में जो हम जुर्म कर रहे हैं। जुर्म नहीं, हमारा वैसे तो कोई जुर्म नहीं है तौहीद पे, लेकिन वो तो सोचते थे ना तुम जुर्म कर रहे हो, तुम साबी हो गए हो, तुम अपने दीन से फिर गए हो, तुम गलत कर रहे हो, तो तुम्हारे ख्याल में जो हम जुर्म कर रहे हैं ना, तुमसे इसके बारे में कोई सवाल नहीं होगा, इसलिए तुम फिक्र ना करो। वला नुसअलु अम्मा तअमलू, और ना हमसे सवाल किया जाना है जो तुम अमल कर। यानी आप दावत तो देते हैं किसी को, आप सही तरफ रास्ते की तरफ बुला तो सकते हैं किसी को, एंड ऑफ द डे कोई किसी का जिम्मेदार नहीं है। ना बाप से पूछा जाएगा उसके बेटे के अमल के बारे में, ना बेटे से उसके बाप के अमल के बारे में। जो जिसका गुनाह है वो अपना गुनाह का भार खुद उठाएगा, इसलिए कोई किसी के ऊपर डाल नहीं सकता, कोई किसी का कह नहीं सकता जी मैं इसका अपने ऊपर वहां पे ले लूंगा, कोई नहीं लेगा, अपना अपना खुद भुगतना पड़ेगा। जो बुराई खुद की है उसका बोझ भी खुद उठाना पड़ेगा। तो उनको कह दिया गया तुम ना हमारी फिक्र करो, वो कहते थे कि तुम गलत हो, तुम हमारी फिक्र ना करो, एंड ऑफ द डे लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन है। पहले ये सूरह काफिरून में ये बात बता दी गई ना कि तो ठीक है आप पहुंचा दिया, किसी ने नहीं मानना तो अब मेरा अमल मेरे साथ, तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ। कुल यजमाउ बैनना रब्बुना, कह दीजिए जमा करेगा हमारा रब हमारे दरमियान, सुम्मा यफ्तहु बैनना बिल हक, फिर हमारे दरमियान हक के साथ फैसला कर देगा। अल्लाह ताला ही हमें जमा करेगा, फिर वो हक के साथ हमारे दरमियान फैसले कर देगा। वहुवल फत्ताहुल अलीम, और वो जबरदस्त फैसला करने वाला है और जानने वाला है। यानी एक दिन तो वो आना है, ठीक है आज तुम नहीं मानते हमारी बात, एक दिन तो आएगा कि अल्लाह ताला ने जब हमें सबको जमा करना है और हमारे इस दरमियान फैसले कर देने, कौन हक पे कौन बातिल पे, ये सब फैसला हो जाना, क्योंकि वो बेहतरीन फैसला करने वाला है और जानने वाला है। फत्ताह जो है ना, अल्लाह ताला का नाम बड़ा ही प्यारा नाम है, और सिर्फ यहाँ पे आता है कुरान पाक में एक जगह अल फताह, और इसका मतलब फताह होता है ना खोलना, बंद को खोल देना, तो अल्लाह ताला खोलने वाला है। क्या खोलने वाला है? अल्लाह ताला रहमतों के खजानों को खोलने वाला है, अल्लाह ताला आसानियों को खोलने वाला है, अल्लाह ताला दरवाजे जो बंद हैं उनको खोलने वाला है। और ये नाम अगर आप कोई मुश्किल है, कोई काम फंस जाता है, ऐसा समझ नहीं आती अल्लाह कैसे ये काम कैसे हल होगा, तो हल के दरवाजे खोलने वाला अल्लाह ही है। जो भी आपका काम है आप या फत्ता हो या फत्ता हो या फत्ता हो बहुत कसरत से कहें, आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपके वो काम को हल फरमा देगा, उस मुश्किल को आसान कर देगा, दूर कर देगा। अल्लाह ताला जो जो आपकी हाजत है वो पूरी कर देगा। मिसाल के तौर पे किसी को जॉब चाहिए, या फत्ता हो अल्लाह ताला इस रिस्क के दरवाजे खोल दे मेरे लिए, ये जहन में रख के सोचे। अल्लाह ताला शिफा का दरवाजा खोल दे, अल्लाह इज्जत का दरवाजा खोल दे, अल्लाह रहमत का दरवाजा खोल दे, जो भी आपकी हाजत है ना, तो आप ये अल्लाह ताला का नाम कसरत से करें, अपनी जुबान पे जारी रखें। खैर और बरकत और खजाने और ये सब के दरवाजे, यानी मिफ्ताह होती है ना, मिफ्ताह हम चाबी कहते हैं मिफ्ताह को, मिफ्ताह इसी से है, फताह से, हर वो चीज जो बंद है उसको खोलने वाली जो चीज होती है, हर वो चीज जिसे खोला जाता है बंद चीज को, उसको मिफ्ताह कहते हैं। तो अल्लाह ताला अल-फत्ताह है, वो खोलने वाला है हर बंद दरवाजे को, हर बंद चीज को, कहीं भी बंदिश लगी हुई है तो अल्लाह ताला उसको, यानी बंदिश से मतलब है कोई भी चीज आपके लिए रुकी हुई है, नहीं वो काम हो पा रहा, अल्लाह ताला खोल देगा, और फिर वो फैसला भी करने वाला। तो हमें अल्लाह ताला की तो हमेशा रहमतों की जरूरत है, तो इस नाम को फिर कसरत से करें। और अलीम जानने वाला भी है, वो सब जानता है अपने, तो इसलिए जब आप उसके फैसले को जान लें तो फिर आपको मुतमईन होना चाहिए दिल में, क्योंकि अल्लाह ताला अलीम है ना, वो सारे फैसलों हमें इतमाद होना चाहिए कि अल्लाह ताला का फैसला सही है, क्योंकि वो अलीम है। वो जो फैसला करेगा अपने इल्म की बुनियाद पे करेगा, ऐसे ही तो नहीं उसने कर दिया कोई फैसला, तो वो उस दिन फैसले करेगा और उसके फैसले हक के साथ होंगे, मतलब है अदल के साथ। हक का मतलब है अदल, किसका क्या मकाम, किसका क्या नतीजा, किसके कौन सा दर्जा मिलना चाहिए जन्नत में, कौन जहन्नुम में किस दर्जे में होना चाहिए, किसको जन्नत मिले, किसको जहन्नुम मिले, किसको जन्नत से में कितनी देर बाद दाखिल करना है, जहन्नुम से कब निकालना है, सारे फैसले अल्लाह ने करने, किसको माफ कर देना है, किसको नहीं माफ करना, किस चीज पे माफ करना है, किस पे नहीं माफ करना, ठीक है। तो ये सारे फैसले अल्लाह ताला उस दिन करेगा, सुभान अल्लाह। और उसके फैसले, क्योंकि वो अल-फत्ताह है और वो अल-अलीम है, सब कुछ जिसको पता है सब कुछ, उसके फैसला करना भी आसान है। कुल कह दीजिए, ए नबी आप इन लोगों से कह दें, क्या अरूनी अल्लदीना अलहक तुम भी ही शुरा, क्या मुझे दिखाओ तो सही उन हस्तियों को जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक मिला दिए, अल्लाह ताला के साथ इलहाक कर दिया, यानी उसके साथ मिला दिया अल्लाह के साथ शरीक बना के। कल्ला हरगिज नहीं, बल हुवल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम, बहुत सख्ती के साथ शिर्क की तरदीद है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाज़े तौर पे बुलंदोबाज ये ऐलान कर देने का हुक्म है कि आप कह दें इनको, दिखाओ मुझे, ला के बताओ मुझे कहाँ है वो हस्तियां जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक करते हो, वो कैसे इस काबिल है। हरगिज़ नहीं, बल्कि अल्लाह ही है जो कुव्वत वाला है, गलबे वाला है, हिकमत वाला है। वमा अरसलनाक इल्ला काफ्फतन लिन्नास, और नहीं हमने भेजा आपको काफ़ा, काफ़ा बना के, यानी काफ़ा का मतलब क्या है कि काफ कहते हैं ना हथेली को, जिसे इंसान चीजों को पकड़ता है, इकट्ठी करता है, तो तमाम लोगों के लिए काफ़ा यानी कामिल, पूरा घेरा कर लेना किसी चीज का, तो यानी सब के लिए बना के भेजा है, सब के लिए, जितनी दुनिया के लोग हैं सबके लिए, चाहे वो अरबी हैं, अजमी हैं, काला है, गोरा है, किसी खत्ते में रहने वाला है, और कयामत तक के लिए, क्योंकि आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। सुभान अल्लाह, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तियाज है बाकी नबियों पर। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान वालों पर और नबियों पर गर्ज सब पर फजीलत दी है। कुछ लोग कहते हैं ना कि देखें मूसा अलैहि सलाम को इतनी फजीलत मिली, अल्लाह ताला ने उनसे कलाम किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फजीलत है, आपकी तो उतनी फजीलत नहीं। नहीं, देखें आप यहाँ पे लोगों ने इसकी दलील दरियाफ्त की अपने अब्बास से, तो आपने फरमाया देखो कुरान फरमाता है हर रसूल को उसकी कौम की तरफ भेजा गया, उसकी कौम के यानी कौम की जुबान के साथ भेजा गया, अपनी कौम की तरफ ही वो आए थे ताकि वो उनको खुलम खुला तब्दील कर दे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला काफ्फतन लिन्नास, सारे लोगों के लिए, सब दुनिया के लिए, सारे इंसानों के। और बुखारी और मुस्लिम में भी हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे पांच चीजें ऐसी दी गई जो मुझसे पहले कभी किसी नबी को नहीं दी गई। ये याद रखे कितनी बड़ी ये फजीलतें, महीना भर के रास्ते तक मेरी मदद सिर्फ रोब से कर दी गई, यानी महीने भर की मुसाफत तक उन जो लोग हैं उनके दिलों के अंदर रोब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से डाल दिया गया। नंबर टू, मेरे लिए सारी जमीन मस्जिद और पाक बना दी गई, यानी उम्मत किसी जगह पे भी नमाज पढ़ सकती है, ऐसा नहीं है सिर्फ उनको मस्जिद ही जाके पढ़नी है वरना कहीं और पढ़ नहीं सकते। और मुझसे पहले किसी नबी के लिए गनीमत का माल हलाल नहीं किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हलाल किया गया। मुझे शिफात दी गई, शिफात का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो दिया गया, और हर नबी सिर्फ अपनी कौम की तरफ भेजा जाता था और मैं तमाम लोगों की तरफ भेजा गया, सुभान अल्लाह, तमाम लोगों की तरफ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया भी है ना, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीअ, कह दीजिए आप ऐ लोगों, मैं रसूल बना के भेजाऊंगी, अल्लाह का रसूल हूँ तुम्हारी तरफ, सब की तरफ, सब की तरफ। तो आज ईसाई लोग कहते हैं कि नहीं वो अरब्स की तरफ थे सिर्फ रसूल, जबकि कुरान कहता है नहीं वो सब के लिए रसूल थे, काफ़ा। और काफ़ा कफ से अगर लें इसको, कफ तो किफ लें तो किफ रोकना होता है, तो रोकना मतलब गुमराही से रोकने वाले थे, गुमराही से रोकने वाले लोगों को गुमराही के रास्ते से और शिर्क से
और इन चीजों से रोकने वाले निकालने वाले आप थे। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते, अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। किस चीज का नहीं इल्म रखते? ये बात नहीं जानते, नहीं बीच में रह गया, बशीर व नजीरा, आपको बशीर भी बना के और नजीर भी बना के भेजा गया, यानी कुछ खबरी देने वाला और डराने वाला। कुछ खबरी उनको जो ईमान ला के नेक अमल करें, और डराने वाला उनको जो कुफर करें, बिदअत करें और किसी किस्म के भी शिर्क के अंदर मुबतला हो। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते कि किसको, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते, ना आपके इस मकसद को जानते, किस मकसद से आपको भेजा गया। आप देख लेना कि आज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान में गुस्ताखियां करते हैं वो किस वजह से करते हैं, जो उनके कार्टून बना रहे हैं या जो उनके बारे में बातें बना रहे हैं वो किस वजह से? इसलिए कि उनको उनके बारे में नहीं इल्म, और हम फेल हुए हैं अपना ये काम करने में कि हम लोगों को अपने नबी से रोशनास कराते। हमें माजरत के साथ खुद ही नहीं पता, तो हमने क्या किसी और को बताना? ज्यादा से ज्यादा क्या पता है, उनका नाम पता है, और बच्चों को भी संडे स्कूल में रटा देते हैं, बाप का नाम ये, माँ का नाम ये, अच्छा फिर उसके बाद उन्हें वो किधर पैदा हुए, अच्छा फिर उन्होंने किस उम्र के अंदर उनको रिसालत मिली, फिर हिजरत कहाँ से कहाँ की, फिर कब फौत हुए, कहाँ फौत हुए, चलो जी दो चार क्वेश्चन रटा के उनकी जिंदगी के बारे में तो समझते हैं काफी हो गया। हालांकि जो उनकी सीरत है उसको पढ़ा जाए, देखा जाए कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कितनी कुर्बानियां दी, कैसे उन्होंने जिंदगी गुजारी, उनका पैगाम क्या था, उनका रहन सहन क्या था, वो सहाबा के साथ कैसे थे, अपनी बीवियों के साथ कैसे थे, अपनी औलाद के साथ कैसे थे, जंगजू कैसे थे, टीचर कैसे थे, बच्चों के साथ कैसे थे, उनकी शान क्या थी, उनके तरीका कार क्या था, उनका उठना बैठना कैसा था, उनका मिजाज कैसा था, वो दुश्मन के साथ कैसे थे, दोस्त के साथ कैसे थे, वो जब गलबा पा जाते थे तब कैसे थे, जब वो मगलूब हुए तब कैसे हुए, सब चीजों के अंदर रानुमाई है। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते, अक्सर में मुसलमान भी आ गए, क्योंकि आज तो यही हाल है ना, और काफिरों को तो वैसे ही नहीं पता। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमान और जमीन के दरमियान जितनी चीजें हैं सिवाय सरकश जिन्नात और इंसानों के, सब जानते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह अकबर। लेकिन इंसानों में अक्सरियत को यही नहीं पता कि आप अल्लाह के रसूल हैं और सबकी तरफ रसूल बना के भेजे गए हैं, जिन्नों की तरफ भी और इंसानों की तरफ भी, और आपकी रिसालत को सब जानते थे। देखिए ना, आपने फरमाया कि आसमान और जमीन के दरमियान जितनी चीजें हैं, वो ऊंट तक जानता था जो बिलबिलाता, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत करने आ गया था अपने मालिक की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत तक के लिए नबी है, कोई और नबी देखे कयामत तक के लिए नहीं, कोई और नबी अपनी कौम से बाहर की कौमों के लिए नहीं था, तो ये कितनी बड़ी बात नहीं है। ये भी बात आपको बता दूं कि ये जितने ईसाई अपनी तबलीग करते हैं, दावत का काम करते हैं, जबकि इनको ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया कि आपकी दावत या ये दीन सारी इंसानियत के लिए, तो ले लेके इसको फिरो, लेकिन इसके बावजूद इनकी जो मिशनरीज होती हैं कहाँ कहाँ तक, ये इतने मतलब दूर दराज के इलाकों में और ऐसे बहुत ही जो इलाके डाउन रोडन एरियाज में जा जाके वहां पे ये तबलीग करते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने तो नहीं इनको कहा था, ईसा अलैहिस्सलाम का तो कॉल कुरान के अंदर है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं बनी इसराइल के लिए रसूल बना के भेजा गया हूँ, सिर्फ उनके लिए, वो तो नहीं सारी दुनिया के लिए थे। हमारे नबी को सारी दुनिया के लिए भेजा गया और उनके उम्मती ये काम ही नहीं कर रहे कि उनके पैगाम को आगे लेके चले, सारी दुनिया को बताएं कि ये तुम्हारे भी रसूल है, सिर्फ हमारे नहीं है, तुम्हारे लिए भी ये वही पैगाम लेकर आए जो हमारे लिए लेकर आए, तो तुम सबके लिए ये काबिले इज्जत है, काबिले एहतराम है, ये तुम्हारे भी रसूल है, तुम्हारा भी हक है कि तुम उनसे उसी तरह सीखो जैसे हमारा हक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए बगैर कोई भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, इसलिए कि कलमे का सेकंड पोर्शन ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है कि मोहम्मद रसूल। अल्लाह के रसूल हैं, जब तक कोई ये नहीं मानेगा, पूरे कलमे को नहीं मानेगा, वो जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता। वयकुलूना मता हाजल बात, वो कहते हैं मजाक उड़ाते हुए या इसको हकीर समझते हुए इस बात को कि हाँ जी भाई कयामत आ जानी है, तो भाई कब आएगी कयामत अगर तुम सच्चे हो। ये हम कई दफा कुरान पाक में पढ़ चुके हैं, इसलिए कि जो कयामत को नहीं मानता उसके लिए कयामत एक हंसी मजाक की बात ही है, उसके लिए कयामत कुछ नहीं है, वो फिर बस ऐसे ही मजाक में ही उड़ाता है। और जो कयामत के ऊपर यकीन रखता है उसकी तो जान हवा हो जाती है, जब वो कयामत के बारे में सुनता है, कयामत के आने के बारे में बात होती है, तो उसके वो तो घबरा जाता है कि अल्लाह मेरा बनेगा क्या, उसके लिए तो घबराहट की बात है, दूसरों के लिए मजाक सोचता है। कुल कह दीजिए, ये पूछते हैं ना इसका कब आएगी, लकुम मियादु यौमिल्ला यस्ताखिरूना अन्हु सा'अतन, इसके लिए तो एक मुकर्ररा दिन है, दिन मुकर्रर हो चुका है जिसमें ला तस्ताखिरूना अन्हु सा'अतन, नहीं तुम ताखीर कर सकते एक घड़ी की भी, तुम उसको डिले नहीं कर सकते, और वला तस्तकदिमून, और ना तुम आगे बढ़ सकते हो, ना तुम उसको लाने में जल्दी कर सकते हो ना देर, तुम्हारे पूछने से जल्दी आ नहीं जानी, तुम्हारे ना पूछने से देर हो नहीं जानी, उसने तो आना है अपने वक्त में, जैसे मौत का वक्त मुकर्रर है, एक इंडिविजुअल की मौत होती है ना उसका वक्त भी मुकर्रर है, इसी तरह कायनात की मौत का वक्त भी मुकर्रर है, वो तभी आएगी। और जैसे कि हम जानते हैं कि इसका वक्त कोई भी नहीं जानता, ना कोई नबी और ना कोई फरिश्ता सिवाय अल्लाह ताला के, किसी को इल्म नहीं। तो बात ये नहीं है कि कयामत कब आनी है, इसके ऊपर डिस्कशन करें और इसके ऊपर ही बहसे मुबहसे करते रहें, इस साल में आएगी कि उस साल में आएगी, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, बात जरूरी ये है कि इसकी तैयारी की जाए, इससे गफलत ना बरती जाए, और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इसकी तैयारी कर सकें, इसको याद रख सकें, इस दिन के मुताबिक अपनी जिंदगी को इसको ढाल सके। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون
الحمد لله الحمد لله انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا ٹیسٹ آ جائے گا انشاءاللہ نصف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ